बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली अब्बास, फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आओ बात करें। क्योंकि हमने शाह साहब से जब प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमने बात की थी कि हम कॉरपोरेट टॉपिक से शाह साहब से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी ये कि रमज़ान के हवाले से बात की जाए और रमज़ान में इंसान खुदा से कैसे करीब हो सकता है और इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो इस मौके पे हम शाह साहब से इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
शाह साहब, रमज़ान में क्या करना चाहिए? सीधा और डायरेक्ट सवाल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल सादा बात है। रब ताला ने जो दीन दिया आपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह हम तक पास ऑन कर दिया, इसका कभी हम गहरी नज़र से मुताला नहीं करते। बड़े क्लियर कट व क्लियरली डिफाइंड डूज एंड डू नॉट्स हैं। जब अगर अल्लाह हमें तौफीक दे दे हम इसको इस एंगल से रीड भी कर लें तो भी हमारा कॉन्सेप्ट एक ये रह जाता है कि ये मुझे करने हैं और इससे रुकना है। कॉन्सेप्ट अपनी जगह दुरुस्त लेकिन नामुकम्मल। जब तक कि हम उन डू नॉट्स पे भी अमल ना करें
जी
उस वक्त तक काम बनता नहीं है। तो डूज एंड डू नॉट्स इन दोनों को पूरी तरह ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। रोजे का भी एक प्रोटोकॉल है, रोजे के लिए भी रब ताला ने क्लियरली डिफाइन किया कि रोज़े में ये काम करो। और सबसे बड़ी बात हमारे पास सुन्नत एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल मौजूद है
जी,
हम वहाँ से लाइट क्यों नहीं लेते। इसी तरह रोज़े में रुक जाने, रोज़े का मतलब ही रुक जाना है,
रुक जाना।
बहुत सी चीज़ों से अपने आप को हमें रोक लेना चाहिए। हम ये समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम है,
जी जी
ऐसा नहीं है। वो जो जितने भी डू नॉट्स हैं उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाना चाहिए,
सही,
कि कहीं हमसे इनडायरेक्टली भी वो सरजद ना हो जाए। तो फिर सही मानों में इंसान को तक्वा हासिल होता है, जो इसका रोज़े का एक मंतकी नतीजा है, जैसे रब ने कहा। तो तकवा उसी वक्त पैदा होता है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए जो हम नहीं समझते
जी,
वो ये है कि अगर हम इसको ये कंसिडर कर लें कि ये 30 दिन एक साल में
जी
जो नियरली 10%
जी जी
बनते हैं साल का,
जी
ये एक रिफ्रेशर कोर्स चलता है हर साल,
सही,
अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरह कारबंद होने का, प्लस जो फर्ज इबादत हैं उनसे ज़रा बियॉन्ड जाके इबादत करने का।
ठीक,
तो इसको अगर हम ये ना समझें कि ये इस एक महीने में ही में हमें करना है, इसको हम ये समझ लें कि ये रूटीन का काम है, लेकिन ये 30 दिन रिफ्रेशर कोर्स है उसका, तो फिर तो पूरा साल हम इन चीज़ों पे कारबंद रहेंगे। वरना होगा ये कि जहाँ रोज़े ख़त्म हुए ईद के रोज़ से ही
जी जी
उन चीज़ों में मैं मुब्तला हो जाऊँगा जिससे अल्लाह ने रुकने को कहा है। ये बड़ी अहम चीज़ है इसके अंदर कि हम इसको रिफ्रेशर कोर्स के लिए के तौर पर ले लें कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी जो है डेली रूटीन, उसको अहकामात के ताबे होना है अल्लाह के, और ये उसका एक रिफ्रेशर कोर्स है।
शाह साहब, आप तकवा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मामला उलट हो जाता है। देखिए, यूरोप जो है वो तो मुस्लिम्स नहीं है, वो चीज़ों को सस्ता कर देते हैं मुसलमानों के लिए, तो हमारे यहाँ जो है वो रेट्स बढ़ जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो पिछला सारा साल का जो स्टॉक पड़ा होता है, जो गला सड़ा ख़राब होता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये तकवा तो ये उलट हो गया।
अली अब्बास साहब, बिल्कुल मैं आपसे यहाँ तक पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ। यूरोप में जुमा कॉर्नर बड़े बड़े स्टोर्स में लगा दिया जाता
जी,
और वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं। लास्ट ईयर नहीं थी, इसलिए कि वहाँ माली हालात उतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए। अब तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि यूके रिसेशन में चला
जी
गया।
जी बिल्कुल।
तो लास्ट ईयर नहीं लगे वो। इसका मतलब ये है कि वो उसको एक फर्ज के तौर पर नहीं ले रहे थे,
जी जी,
बल्कि ये ले रहे थे कि चूंकि फाइनेंशियली हम हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो अपने कस्टमर्स को जो मुस्लिम कस्टमर्स हैं उस प्रॉफिट का एक हिस्सा पास ऑन कर दिया जाए। लेकिन लास्ट ईयर नहीं लगे
जी,
अभी साल भी मेरा ख्याल है शायद नहीं लगाए गए, मुझे मालूम नहीं, मैं गया नहीं हूँ
जी।
लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि आज से 200 साल पहले उनका क्या हाल था, 300 साल पहले क्या हाल था। वह हमसे भी बुरे हालों में थे,
सही,
लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, और 300 साल की एफर्ट के बाद वो यहाँ तक पहुँचे। हमें अभी 75 साल हो रहे हैं, 77 साल हो रहे हैं, तो हमें तो रखनी चाहिए कि अगर वो 300 साल, 350 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम शायद 150 साल में वहाँ तक पहुँच जाएंगे।
सही।
तो अप्रिशिएट तो हम उन्हें करते हैं, लेकिन ये कहना कि साहब वो हमसे अच्छे हैं, हमसे एक गलती हुई भी है, सिर्फ एक गलती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तजर्बाकार बाप
जी
अपने बेटों को कह रहा हो कि बेटा ये एक्सरसाइज करो, तुम्हारी सेहत भी बड़ी अच्छी रहेगी, तुम्हारी फिजिक भी बिल्डअप हो जाएगी, बहुत खूबसूरत बॉडी बन जाएगी तुम्हारी और ताकतवर हो जाओगे। बेटे इस कान से सुन के इधर से निकाल रहे हैं, लेकिन विंडो के बाहर उनके दुश्मनों का एक बच्चा बैठा है, वो पूरी बात सुन रहा है, और जाके वो अगले दिन से उस पर अमल शुरू कर देता है। तो बेनिफिट किसको मिलेगा, उस आदमी के बेटों को या दुश्मन के बेटे को?
दुश्मन के बेटे जो इम्प्लीमेंट करेगा,
उनकी जिंदगी को जरा, वेस्ट की जिंदगी को गौर से देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा
जी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर जमान नहीं माना, कुरान को डिवाइन बुक नहीं माना, बाकी का पूरे के पूरे अहकामात इस्लाम के वो अपनी जिंदगी में जो हकूकुल इबाद वाला हिस्सा है उनकी जिंदगी का, उसमें वो ले गए, उसमें वो ज्यादातर उन अहकामात पे अमल कर रहे हैं। तो जो भी उस पर अमल कर लेगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो
जी जी,
उसको उसका फल तो मिलेगा, तो दुनियावी तौर पे उसका फल ले रहे हैं।
सही।
तो हम उस पर अमल नहीं करते, हमें खौफ खुदा नहीं होता, चीज़ें यकलख महंगी हो जाती हैं,
सही,
वहाँ ये काम नहीं करते।
शाह साहब, छोटे होते मैं सवाल सुनता आ रहा हूँ टीवी पे भी, जब भी रमज़ान आता है तो सवालात आने शुरू हो जाते हैं जी, कुल्ली करनी से रोज़ा टूट जाता है, नाक में पानी डालने से क्या रोज़ा टूट जाता है, क्या अगर हम इंजेक्शन लगा लें तो रोज़ा टूट जाता है, क्या अगर हम ब्लड दे लें तो क्या रोज़ा टूट जाता है, क्या हम ब्रश कर लें तो क्या रोज़ा टूट जाता है। पिछले 20 सालों से आज भी वही सवाल है।
नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कमी हुई है, उलेमा ने बड़ी खिदमत की है इस मामले में, जो रोज़े के अहकामात हैं उनको बड़े वाज़े तरीके से उसको बयान किया है, और उसके रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, आप انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, صرف ٹائپ کر دیجئے سوال, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا.
جی جی,
کتابیں موجود ہیں, اخبارات میں آتے رہتے ہیں.
جی,
تو علماء کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جی, روزے کے جو احکامات ہیں بڑی جزیات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے علماء نے. اور اب میرا خیال ہے جن جن تعلیم بڑھی ہے ایسے سوالوں میں کمی آ گئی ہے. اب سوال اور طرح کے ہو گئے ہیں, بڑے انٹریگنگ ہو گئے ہیں, اور اچھا ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم کو میں اضافے کا سبب بنتی ہیں.
جی,
کسی بات کے بارے میں شک پیدا ہو دل میں تو آپ تحقیق میں پڑھتے ہیں, تو جب تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا علم بڑھتا ہے.
صحیح.
یا آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور آپ وہ سوال پوچھیں کسی صاحب علم سے, کسی علماء میں سے کسی کے, تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو علم کو بڑھانے کے یہ دو ہی راستے ہیں.
صحیح.
ایک بہت بڑی پرانی بات ہے, مے بی اباؤٹ 25-30 years back, ایک سیمینار میں کسی صاحب نے ایک بات کہی کہ امام غزالی کو میں عالم نہیں مانتا.
جی,
ان کے ذہن میں شک پیدا ہوتا تھا. تو میں نے اس کے جواب میں ایک عرض کیا کہ امام غزالی کو امام غزالی بنانے والی ہی یہ چیز تھی کہ ایک بات سنی, اس کے بارے میں تشکیق آئی, اس پر تحقیق کی, ایک تھیوری برآمد ہو گئی.
صحیح.
تو یہ تشکیق اور سوال, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں.
اچھا, رمضان کے حوالے سے کوئی ایسا عمل بتائیں جو لوگ کریں اور وہ اپنے آپ کو خدا سے قریب پائیں, اور وہ عمل ہر حال میں جو ہے وہ خدا کے نزدیک اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے.
دیکھیے, ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت شاید نہ پڑے اس میں. عام حالات میں بھی
جی
اللہ کے نزدیک تین بہت ہی محبوب عمل ہیں انسان کے.
جی,
بھوکے کو کھانا کھلانا.
ٹھیک.
مقروض کا قرض ادا کر دینا.
اچھا, مقروض کا قرض.
دوسرا, غلام کو آزاد کرانا. اب غلام تو آزاد ہوتے نہیں ہیں.
جی, ہوتے نہیں. اب
اس کا دوسرا حال ہمارے پاس
جی
ہے.
جی,
وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر جیل میں,
ہاں جی جی جی,
ہر ایسے قیدی مل جائیں گے جو اپنی قید تو پوری کر چکے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس ہیں بطور جرمانہ.
جی جی جی,
وہ رہا نہیں ہو پا رہے.
بالکل صحیح کہا.
تو جتنی ہماری جیب اجازت دیتی ہے, جتنی ہمت ہے, توفیق ہے, ہم وہ لسٹ لے لیں کسی بھی جیلر سے اور ان کے وہ جرمانے ادا کر کے ان کو رہا کروا دیں کہ وہ اپنے بچوں میں جا کے عید منا لیں. تو یہ بہت سے لوگ اب کرنے لگ گئے.
بڑی زبردست اپروچ ہے ویسے, بہت ہی زبردست بات ہے.
اسی طرح ہمارے یہاں یہ ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پہلو ہے جو ہم افطار لگاتے ہیں سڑک پر.
جی جی,
پارک میں.
جی,
اس سے بہتر کام ہے کہ ہم ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں. وہ سفید پوش خاندان جو اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں, بڑی خاموشی سے رات کی تاریکی میں انتہائی رازداری کے ساتھ مہینے بھر کا راشن ان کے یہاں ڈلیور کر دیا جائے تاکہ پورا خاندان رمضان کا پورا مہینہ سحر و افطار اس رزق سے کر لیں. اللہ کو امید ہے یہ چیز بڑی پسند آ جائے گی. لیکن میں اگین اس کے اوپر زور دینا چاہوں گا
جی
کہ انتہائی رازداری کے ساتھ, اتنی رازداری کہ خود ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کو کچھ دے دیا.
بالکل صحیح,
یہ بڑی اہم چیز ہے.
لیکن شاہ صاحب, اس میں نا تسکین نفس نہیں ہوتی نا. آپ جیسے آپ جب لگاتے ہیں, ایک پورا لوگ آتے ہیں, پھر آپ ہاتھ سے ان کو کھا کے دیتے ہیں, پھر آپ کو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب بڑا اچھا کھانا کھلایا آپ نے, आपका शुक्रिया। और इस तरह के फिर कलमात आपको मिलते हैं, फिर उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी बनती हैं, कोई वीडियो कवरेज करने के लिए आ जाते हैं, वो फेसबुक पे यूट्यूब पे उस पर एक तस्वीर हो जाती है। तो ये तो पूरा एक प्रोसेस है ना, ये मज़ा आता है इस पूरे प्रोसेस में। उसमें क्या मज़ा, आपने ख़रीदा और आपने बगैर नॉक भी नहीं किया और रख दिया और आप चले गए।
अब इसमें एक फर्क आ जाएगा। अगर तो ये सब मैं कर रहा हूं अपने रब को राजी करने के लिए कि मेरे रब राजी हो जाए, तो फिर तो रब से तो नहीं छुपी, खलके खुदा से मैं छुपा लूंगा बात को,
जी
लेकिन रब तो देख रहा है, वो रजिस्टर कर रहा है कि मेरे इस बंदे ने मेरे इन तमाम बंदों के लिए खिदमत कर दी उनकी,
जी
रब राजी हो जाएगा। ये जो नेकी है, नेकी और तकब्बुर में एक बड़ी हेयर लाइन फर्क है,
जी
बाल बराबर बारीक सा फर्क है नेकी और तकब्बुर में। जब हमें ये एहसास होने लग जाए कि मैं नेक काम कर रहा हूं, वो तकब्बुर में चला जाएगा।
ठीक
जब तक मेरे अंदर ये एहसास है कि यार मैं नेक काम नहीं कर पाता, और फिर ये तो नेक काम के जिम्मे से भी आगे मुझे सोचना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है मेरे रब का अता करदा है, मेरा अपना नहीं है, वो मेरे रब ने फराहम किया है। तो मैं अगर अल्लाह ही के बंदों को उसमें हिस्सेदार बना लूं,
जी
तो मैंने कौन सा कोई कमाल किया है, कौन सी नेकी की है, ये तो मैंने सिर्फ इतना ही किया। हाँ, अगर मेरा अपना हो, रब का आता करदा नहीं है माज़ अल्लाह,
जी जी
फिर मैं किसी को दूं तो देन आई हैव ए रीजन कि मैं ये सोच लूं कि मैंने किसी को कुछ दिया। इससे भी बड़ी एक और बात है कि मैं खुद अल्लाह का मोहताज बंदा हूं, मैं अल्लाह के दर पे बैठा हूं भिखारी की तरह।
जी
एक मोहताज दूसरे मोहताज को क्या देगा, एक भिखारी दूसरी भिखारी को क्या दे सकता। तो मेरा ये सोचना कि मैंने किसी को कुछ दिया,
जी
ये तो वैसे अपने साथ ही जुल्म है, ये सोच की कजी है कि मैं खुद अल्लाह का मोहताज हूं, उसके किसी बंदे की खिदमत कर दी, तो मैंने कौन सा कोई कमाल कर दिखाया।
सही
तो अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए ये दिखावा
जी।
क्या किया जाए।
अच्छा शाह साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं, रीज़न देते हैं कि हम इस तरह का इसलिए लंगर बनाते हैं या इसमें लगाते हैं, सजाते हैं, ताकि और भी लोगों को इसकी तरगीब हो
इंस्पायर हो,
और वो भी ये देना शुरू
उसका
कर
एक
दें।
पहलू है,
जी
ये एक पहलू है। लेकिन सवाल ये, दोनों में से अफजल कौन सा है? इसमें एक इस्तेमाल ये है कि मेरा नफ्स फले फूलेगा
जी
कि मैं इतने लोगों के लिए करता हूं,
सही
क्योंकि जब हम किसी को देते हैं
जी
उससे हमारा नफ्स बड़ा खुश होता है, और बजाय वो नेकी में होने के
जी
उल्टा हम गुनाह की तरफ चले जाते हैं। तो जितना मैं छुपा के देता हूं, मैं अपने नफ्स का गला घोंट रहा हूं। तो नफ्स कहता है कि तुम लोगों को बताओ कि तुमने इतना दिया,
जी
मैं कहता हूं कि नहीं, मैं इसको इतनी राजदारी से दूंगा कि खुद मुझे भी पता न चले कि मैंने किसी को कुछ दे दिया। और जब लफ्ज मेरी जुबान पे देना आता है, तो मैं फौरन अपने आप को लान तान करता हूं कि तुम तो खुद भिखारी हो, अल्लाह के दर पे बैठे हो, तुम किसी को क्या दे सकते हो, एक भिखारी किसी को क्या देगा।
शायद सर, कुरान की एक आयत है, उसका मफहूम है कि चाहे तो छुपा के दो और चाहे तो
चाहे
बता के दो।
जी
तो इस आयत के हवाले से तो हमें ये एक प्ली मिल जाती है कि हम अगर तशहीर करना चाहें अपनी दिए हुए चीज़ों की, तो हम कर सकते हैं।
खुलेआम दिया जाए, बिल्कुल सही है, कुरान तो हर हाल में सच कहता है। लेकिन अगर ये खतरा है कि मैं कमजोर हूं, इससे मेरा नफ्स फले फूलेगा,
जी
तो फिर मुझे मख्फी तरीके से देना चाहिए ताकि मेरा नफ्स न फलने फूलने पाए।
सही। चलो थोड़ी सी आप अपनी रूटीन बताएं कि आप रमज़ान में आपकी अपनी रूटीन क्या होती है।
नहीं, मैंने जैसे अर्ज किया, मैं तो एक अल्लाह का एक मोहताज बंदा हूँ जो अल्लाह के दर पे बैठा है, उससे लेके खाने वाला है। तो मेरी रूटीन क्या हो सकती, कुछ भी नहीं है। तो सीधी बात है, रोटी खा रहा हूँ।
अच्छा, बहुत सारे लोग ना वो कुरान मजीद का भी जो बहुत जिक्र आता है कि कुरान मजीद रमज़ान में नाजिल हुआ,
जी
रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, कुछ लोग कहते हैं 27वीं की रात में हुआ, कुछ बाकी कुछ ना कुछ डेट्स का भी इख्तलाफात है। तो वो लेकिन उस वक्त जब वैसे नाजिल हुआ तब तो खैर रमज़ान नहीं था, वो मेरे ख्याल से उन्होंने कैलकुलेशन करके बैक डेट्स पे लेके जब गए हैं कैलेंडर को तब हिसाब लगाया कि ये रमज़ान में ये हुआ नाजिल।
नहीं, वो एक लंबी चीज़ है। इसमें कुरान पाक तो मुख्तलिफ मौक़ों पर बिट्स एंड पीसीस में नाजिल हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि वह 27 रमज़ान को मुकम्मल हो गया,
अच्छा, मुकम्मल हो गया।
या तो इस एंगल से ले लें आप,
सही।
या ये ले लिया जाए कि लोहे महफूज से उतारा गया 27वीं रात को, तो 27 शबे कदर वो उस लिहाज से बन जाएगी।
जैसा मैं एक दफ़ा ना रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ रहा था मस्जिद में, और मैं ना तर्जमा पढ़ रहा था उसका कुरान मजीद का साथ साथ, तो जो मौलवी साहब आए वो मेरे पास आए, मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने कहा जी मैं इस तर्जमा पढ़ रहा हूँ कुरान मजीद का, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो कहते हैं कि आप तर्जमा नहीं पढ़ें, आपको समझ नहीं आएगी, आपको किसी ना आलम के पास जाना चाहिए, जो आपका मसला है, जो आपने बात पूछनी है, आप उनके पास जाके पूछें। तो क्या ये रवैया ठीक है?
नहीं, पढ़ने में हर्ज कोई नहीं, ज़रूर पढ़िए। अलबत्ता जिस तरह ये कहा जाता है कि कुछ बयानात हैं, कुछ उसमें मुशाबहात हैं,
जी।
मुशाबहात में कई जगहों पर तशरीह की ज़रूरत पड़ती है, वो इस्तेमाल होता है, बंदे को इस चीज़ का इस्तेमाल रहता है कि मैं अपनी कम इल्मी कम फहमी की वजह से गलत ना समझ बैठूं उसे।
जी।
तो वहाँ जो उलमा हजरात हैं उनसे इस्तफादा कर लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि ये नुक्ता मेरे जहन में है, इसको आप वाजे कर दें, तो वो कर देंगे।
अच्छा शाह साहब, एक और हमारे माशरे में ना परसेप्शन है, लोग दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह मेरी रुख्सत है इस दुनिया में जो वो रमज़ान के महीने में रुख्सत हो मेरी। कुछ लोग कहते हैं जी मदीना में मेरी रुख्सत हो इस दुनिया में, और कहा जाता है कि जो लोग रमज़ान में जिनकी वफात होती है वो सीधा जन्नत में चले जाते हैं।
अकीदत अच्छी चीज़ है, मारे मोहब्बत के हमारी ख्वाहिश ये होती है कि मैं मदीना मनवरा में मेरी जान निकले और मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊँ,
जी।
कि पड़ोस हासिल हो जाएगा मुझे नेक लोगों का। ये अकीदत अच्छी चीज़ है, इसमें हर्ज क्या है।
सही। और रमज़ान में जो कहते हैं जो वफात होती है वो जन्नत में जाते हैं लोग सीधा।
मैं इस बारे में, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपसे अर्ज़ किया कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ। मुफ्ती तो बहुत बुलंद मकाम है,
जी।
उलेमा में भी मुफ्ती कम होते हैं, तो फतवा देने वाला तो मुफ्ती है। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत उलेमा से मैंने सीखा है,
जी।
जन्नत और जहन्नुम का फैसला मेनली तो अमाल पर है कि यौम हिसाब मेरा अमालनामा क्या कहता है।
सही।
अगर मेरे नामे अमाल पर गुनाहों की स्याही फिरी है ब्रश से, तो वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात है
जी।
या अल्लाह की रहमत है जो मुझे जन्नत में भेज दे, वरना फैसला तो नामे अमाल पर है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं खलके खुदा के साथ मेरे मामलात क्या रहे हैं, बहुत ही बारीक सा नुक्ता,
जी।
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान की तौहीन होती
तो
रही
सही।
है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी की गीबत करके उसका दिल दुखाता रहा हूँ,
जी।
किसी का हक तो नहीं मैं मार गया। ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मुझसे सरज़द होती रहती हैं।
होती रहती है, तो इस पे ज़्यादा गौर और फोकस करना चाहिए।
बहुत इस पे मोहतात रहना चाहिए।
सही है। आपके वक्त का शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी मुद्दलल गुफ्तगू सुनी रमज़ान के हवाले से। जो नुक्ते दो तीन मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि आप खाना खिलाएं लोगों को, और ख़ास तौर पर जैसे ग़ुलाम अब आज़ाद नहीं हो सकते। बड़ा अच्छा नुक्ता शाह साहब ने बयान किया कि जो लोग अपने जुर्माने नहीं अदा कर पाते और वो जेल में कई कई महीने रहते हैं, उनके आप जुर्माने अदा करके उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ ईद गुजार सकें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।